3 अगस्त 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज राखी का दिन भी है, रक्षाबंधन है। प्रत्येक बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा बंधन का सूत्र बांधती है और उसके मन में ये भावना रहती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा। हम बहन भाई कभी एक दूसरे के विरोधी न बने, सदैव भाई के पास में आऊं, भाई मुझे बुलाए और भाई कभी आवश्यकता पड़े तो मेरी रक्षा भी करे। मैंने ये मैसेज भी दिया था आपको व्हाट्सएप में कि रक्षाबंधन का अर्थ किस प्रकार से लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये उच्चतम त्योहार है जिसमें बहन भाई के सच्चे प्रेम को दर्शाया गया है। हिमायु को जब एक राजपूत ने रानी ने गणमती ने राखी भेजी तो हिमायु ने अपनी फौजी पीछे हटा दी थी। क्यों? क्योंकि हिमायु भी समझता था कि बहन का रिश्ता क्या है। हमें भी सब बहनों को भाइयों से भी प्रेम मिलना चाहिए, भी रक्षा मिलनी चाहिए और हम सदैव भाइयों के साथ सुख दुख को निभाए। अब मैं गीता का अध्याय 5 श्लोक 18 में पढ़ती हूँ। विद्या विनय संपने ब्राह्मणे रवि हस्तने सुनी चैव सौपात्मिकता पंडिता समदर्शना। यानी महापुरुष विद्या विनय ब्राह्मण में वो चिंडाल तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। बेसमझ लोगों के द्वारा ये श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु श्लोक में सम बैठना न कहकर सम दक्षिणा कहा गया है जिसका अर्थ है सम दृष्टि न कि सम व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण चंडाल गाय हाथी कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है, इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है ना कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है ना कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है ना कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग व्यवहार में विषमता अनिवार्य है पर सुख दुख में समता होती है, अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है वो दुख हमारा दुख, हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहे नहीं होती है। ऐसे ही प्राणियों में विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। आप इस श्लोक का अर्थ भली भांति समझ गए होंगे कि अगर कुत्ते को दर्द है और दूसरी ओर किसी मनुष्य को दर्द है तो हमारे मन में समान दया होनी चाहिए कि कुत्ता भी पीड़ा से तड़प रहा है और कोई मनुष्य भी, तो ये नहीं कि कुत्ते की पीड़ा की ओर ध्यान ना दो। हमें सब क्या ध्यान रखना चाहिए लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जिस चीज के लिए जो वस्तु या प्राणी पशु बना है उसका प्रयोग उसी के द्वारा वैसा ही होना चाहिए। श्लोक 19 तर्जिता सर्गो येषाम सामने स्थिता मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। ये श्लोक भी बड़े ऊंचे स्तर का है। इतना ऊंचा है कि जिनका जिस मनुष्य का अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही अंतःकरण कहा गया है, जिसका समता में स्थित है। जैसे मैंने बताया चाहे मनुष्य को दर्द है चाहे कुत्ते को, है ना, चाहे कुत्ता भूखा चाहे मनुष्य, तो उनके प्रति हमारा एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर मनुष्य को हम घी लगा के रोटी देते हैं तो कुत्ते को भी दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समता का व्यवहार जब आ जाता है तो मनुष्य संपूर्ण संसार को जीत लेता है। एक भक्त हुए जो खाना बना रहे थे, चपातियां बना बना के रखी थी, घी पास था, अपने को कुत्ता चपात दो चपातियां उठा के ले गया। ले गया तो वो भक्त दौड़े का ठहरो भगवान घी तो लगाया ही नहीं। तो ये है समता। महर्षि रमन जब गंगोत्री से गंगा जल लेके रामेश्वरम जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा लाइन लगी हुई थी लोगों की, जाने वालों की, उनमें वो भी एक थे। क्या देखा उन्होंने कि एक गधा पड़ा है और प्यास से हांफ रहा है। बहुत लोग जा रहे हैं, साधु संत गृहस्थी अमीर गरीब सबके हाथ में गंगा जल का लोटा है, लेकिन कोई भी उसके मुंह में एक बिंदु एक कण जल नहीं डालता। देख के आगे चले जाते हैं, हमने तो शिव जी को जल चढ़ाना है। जब ब्रह्मन महर्षि आए तो उन्होंने देखा, उनको लगा हो गधा तो प्यास के कारण मरा जा रहा है, तो उन्होंने वो गंगा जल जो शिव मूर्ति पर चढ़ाना था वो गधे को पिला दिया और गधा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद एकदम से महर्षि हमको भगवान के शिव जी के दर्शन हो गए। तो शिव जी ने कहा, मैं तो प्रत्येक प्राणी में हूँ, तभी कहा है ना गिंदिया, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब घटना प्राण। तो जब दया आती है तो समता भी आती है। अगला श्लोक है 20वां, न प्रेष्य प्रेम प्राप्य न उद्दीज्य कर प्राप्य चाप्रियम से बुद्धि समूढ़ गंभीर गमनी स्थिता। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। जैसे बुद्धि वाला मूर्त रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। अब बताया कि ब्रह्म में कौन स्थित है, ऐसा तो सभी कहते हैं बड़े ज्ञानी बड़े, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हम तो ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन यह गीता अध्याय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बड़ा प्यारा व्यक्ति जो हमें मिल जाए तो हम उतने हर्षित मतलब हर्षित ना हो, और जब कोई बहुत हमारे खिलाफ चलने वाला है उसको देख कर वो मिल जाए तो हमारी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, हम उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ऐसा मनुष्य जो प्रिय और अप्रिय में बराबर हो जाता है, सम हो जाता है, असली में वही ज्ञानी है, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही ब्रह्म में स्थित है। जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता के ज्ञान तो होता है, पता तो लग जाता है उसको कि ये मनुष्य अच्छा है प्रिय है और ये मनुष्य ऐसा है। लेकिन फिर क्या करते हैं, कोई उसके कहलाने वाले अंतर्गन शोक आदि विकार नहीं होते। ये बात नहीं कि ज्ञानी जड़ होता है, जो मर्जी आया जो मर्जी उसको बोल के चला गया या उसको धकेल दिया, इस बात पता तो उसको सब लगता है, वो जानता भी है, लेकिन उसके मन में उसके अंतर्गन में न प्रिय के प्रति राग होता है न अप्रिय के प्रति द्वेष होता है, ना वो किसी चीज को पाकर हर्षित होता है ना ही किसी गलत चीज को पाकर शोक में डूबता है। ज्ञानी होना दोषी नहीं है, प्रकृत विकार होना दोषी है, मतलब किसी के मन में किसी प्रकार का विकार जब आ जाता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है और अहम आ जाता है। अच्छा आगे है श्लोक 21, बाह्य स्पर्शे सत्तात्मा बिंदित्यात्मन यत सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख नक्षे नश्नते। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। ये ब्रह्म ज्ञानी के विषय में अगर हमें जानना है तो वो कैसा होता है, जब संसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, मतलब संसारिक जो लोग है और संसारिक जो वस्तुएं है घर और जो कुछ भी है घर में जितना सामान है बगीचे है जो भी हमारा संसारिक जो भी हमारे रिश्तेदार है उनके प्रति हमारा मोह खत्म हो जाता है, तब उस साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। और जब सात्विक सुख का भी वो साधक उपभोग नहीं करता है उसमें भी संतोष नहीं करता कि हाँ मैंने पा लिया सब कुछ पा लिया, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। आगे से आगे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सात्विक सुख तो प्रकृति होने से खंडित होता रहता है। ये तीन गुण जो है ना, ये तो कुदरत के अंतर्गत है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए ये कभी बड़े हो सकता और कभी कम भी हो सकता है सुख, भले वो सात्विक है। पर जो अखंड सुख हमें भगवान की तरफ से मिलता है वो कभी खंडित नहीं होता और वो हमेशा एक रस रहता है। ये अखंड सुख मोक्ष का सुख है। ऐसे मनुष्य को जिसने ये सुख प्राप्त कर लिया है वो जीवित होते हुए भी महाज्ञानी है, मोक्ष का अधिकारी है और विदेह है। श्लोक 22, ये ही संस प्रजा होगा दुख योने एवते अधंत बंत कौनते ना तेषु रमते बुधा। क्योंकि ये कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला भोग सुख है, वे आदि अंत वाले दुख के ही कारण है। मतलब जो हमें इस देह से सुख मिलते हैं ना, इंद्रियों से मिलते हैं, वो क्या है, अंत में दुख मिलता है। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से है कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता है। तो आप देखते हैं आपके जीवन का अनुभव है, सब सबके जीवन का अनुभव है कि संसार एक सुख एक जैसा नहीं होता। यहाँ तक कि अपने शरीर का सुख देखिए, बचपन क्या था, जवानी क्या थी, ब्रह्मचर्य क्या था, गृहस्थ आश्रम क्या था, दिन प्रतिदिन वो बदलता ही रहता है। लेकिन वो दुख रूप भी बन जाता है। संसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति है ही नहीं। निरंतर सुख देने की शक्ति तो केवल मोक्ष में है, मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है। हम सोचते ना, बड़े सुख है, कार ले ली, गाड़ी ले ली, महल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ प्राप्त करते, लेकिन अंत क्या होता है कि हमें कोई ना कोई दुख उनसे मिलता है। संसारी सुख मिलने और छोड़ने वाला है, मिलता भी है प्रभु, चला भी जाता है, जबकि स्वयं निरंतर ज्यों का त्यो रहने वाला है। स्वयं सुख आत्म सुख है, वो थोड़ा एक जैसे रहता है। वो एक कमरे में बैठा है मनुष्य, क्या 10 कमरे उसके पास है, वो अमीर है या गरीब है, वो कैसा भी है वो एक जैसे रहेगा। संसारिक सुख किसी का साथी नहीं है। इसलिए जो विवेकी साधक होते हैं, जो संसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी, वो ना मिले संसारिक भोग तो दुखी नहीं होता है। हमें ऐसा बनना है कि अगर हमें भोग मिल गया, कोई बात नहीं, मिल गया, भगवान ने दे दिया, भगवान की कृपा है, प्रसाद समझकर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मिला ही नहीं तो दुख भी नहीं होना चाहिए। संसारिक भोगों से एक और बड़ी रुकावट आती है, वो क्या है, संसारिक भोग भोगने के बाद मनुष्य थक सा जाता, थक जाता है। लेकिन जब हम परमार्थ सुख लेते हैं तो हमें विश्राम मिलता, आराम मिलता है, मन शांत हो जाता है। संसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। मतलब संसार के सुख किसी न किसी पर डिपेंड है, सापेक्ष है वो, या वस्तु पर या मनुष्य पर। लेकिन जो भगवान का सुख है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो बस अकेले मनुष्य खुश है, भगवान में लीन है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े संसार सुख का भी त्याग करके सो जाता है। अब तो नहीं बोलता मेरी 10 कोठी 8 महल है, मैं क्यों सो, मैं क्यों, वो अपने आप सो जाता है। और सोने से उसकी थकावट घट जाती है, बिक जाती है, विश्राम मिलता है और फिर से ताजगी आती है। यदि वो सोए नहीं तो पागल हो जाएगा। इसलिए संसार सुख का त्याग किए बिना ऊंचा रह नहीं सकता। होता तो है त्याग, कर ली मैं बैठी थी मैं और पुष्प गोयल जी, तो हमारी बातचीत चल रही थी साय का, तो सत्संग हो रहा था, पुष्प जी कहते हैं कि देखो ये भी क्या, हम कितने कितना बनाते हैं, घर बना लिया, बगीचा बना लिया, लेकिन किस प्रकार है एक मनुष्य को एक दिन वो छोड़ के जाना है और फिर जन्म होना है, तो फिर नया घर बनाना है, फिर मरना है, फिर नया घर बनना है, बनाना है। तो मैं क्या, हाँ पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही है आप, अभी तो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है पुनपि जन्म पुनपि मरणम पुनपि जन्मे जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मतलब हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो हम इसी संसार चक्र में फंसे रहेंगे। श्लोक 23 शक्नोति है या सोढ़ वाक्से विमोक्षा काम क्रोधो भवम वेदम सहिता स सुखी नर। देखिए वो कौन सुखी है, भगवान कहते हैं जी अर्जुन मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में स्वर्थ होता है। मतलब मरने से पहले ही हम इस संसार में रहते हुए सुख आए चाहे दुख आए हमें क्रोध नहीं आता ना हमें काम आता है, तो ऐसा योगी जो है वही सुखी है वही परम योगी है। इसलिए साधु को चाहिए कि वो काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ दे, उसका त्याग कर दे। जब किसी को काम और क्रोध आए तो एकदम से त्याग कर दो। काम क्रोध आदि के वश में ना होने वाला साधक ही वास्तव में योगी होता है, और जो योगी है वह सुखी है। श्लोक 24 यो अंत सुखो अंत रामा तत्व स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो निश्चय केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है मैं ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तुलसीदास लिखते है तुम ही जाना तो तुम ही हो जाए, और वेदों में भी आता है ब्रह्म वेद भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म बन जाता है, और भगवान जो तुम्हें जानता है वो तुम बन जाते हो। तो यही भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्म की स्थिति को अनुभव कर लेता है वो स्वयं भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है। लवंते ब्रह्म निर्वाण निश्चय क्षीण कलमशः छिन्द रहता सर्वभूत हिते रहता। गीता श्लोक 25 जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, ध्यान रखने वाली बात है ये। सोचो क्या बोल रहे हैं भगवान, मन पहले तो शरीर जो स्थूल है दिखाई दे रहा है हमको, फिर मन फिर बुद्धि फिर इंद्रियां पांच इंद्रियां कर्म इंद्रियां पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां एक मन 11 फिर बुद्धि 12 जिसका क्या है वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है। जो सदा सोचता है कि उसका ये भला हो जाए उसका ये भला, चाहे वो हमारा थोड़ा सा सामान देने से किसी का भला होता है तो क्या होता है मनुष्य के सब संशय दूर हो जाते हैं। जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कहते हैं ब्रह्म किसको मिलता है, कहते हैं सभी ब्रह्म की इच्छा के लिए चलते हैं। ये तो कहा तुम ही जाने तुम ही हो जाए, है ना। ब्रह्म को जानने से मनुष्य ब्रह्म ही बन जाता है, लेकिन वो कैसे जाने उसके लिए सर ने बताया है कि मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करना है। वश में करके प्रत्येक प्राणी जो सामने आ जाता है उसके भले के लिए सोचना है कुछ करना है उसके लिए। गीता अध्याय 5 श्लोक 26 काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिता आत्मा नाम। काम क्रोध से स्वस्थ रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। देखिए ऐसी बात नहीं कि मरने के बाद ब्रह्म मिलता है, लेकिन जिन्होंने काम और क्रोध को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों वश में कर ली है, जिनका मन बुद्धि चित्तकार अपने वश में है, वो ब्रह्म को बड़ी जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। 27 और 28 श्लोक स्पर्शान कृत्वा बहाय चक्षु चैवान्तरे ध्रुव प्राण प्राणो समुखत्वा नासाभ्य अंत चायिनो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्ष पलायन दिग्दिच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सब। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को बहुओं के बीच में स्थित करके तथा नाशिका में बिछने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है जो केवल मोक्ष प्राय है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से स्वतः रहित है वह मुनि सदा मुक्त ही है। ये मुनि के लक्षण है। क्या कहना ऋषि मुनि, मुनि कौन होता है ये बता दिया। ये बोल बाहर के जितने भी है ना पदार्थ रोटियां महल खाना पीना जो भी है उनको छोड़ देता है फिर आंखों को बंद करके अपनी दृष्टि को दोनों भावों के बीच में ले जाता है और नाशिका से प्राण प्राण और अपान वायु को बराबर करके मन बुद्धि चित्त को हंकार को वश में कर लेता है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। भोक्तारम यह तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानम ज्ञातवा माम शांति मिच्छति उन्नति श्लोक। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण योगियों का सुहृद। सुहृद कौन होता है? स्वार्थ हित जो दयालु होता है प्रेमी होता है जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भक्त ऐसे भक्त को शांति मिलती है जो सबसे बिना स्वार्थ के ही प्रेम करता है और उन पर दया करता है और मुझे ही सब कुछ मानता है। सती श्रीमद भगवत गीता शास्त्री श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग नाम पंचम अध्याय। अब मैं एक भक्त का वाणी जो उन्होंने बाबा जी के विषय में लिखी है सीताराम सूद और उनकी धन पत्नी उर्मिला सूद। मैं सीताराम सूद तथा उर्मिला सूद शारद वाणी पत्रिका के तेजस्वी अंक के सुनहरी अवसर पर श्री गीता माँ जी को बधाई देते हैं। इस पत्रिका के माध्यम से मैंने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं। मेरी पत्नी उर्मिला जो सदैव कहा करती है कि जब मैं बहुत बीमार हो गई थी जीने की आशा खत्म हो गई थी घर वाले सास ससुर समझ रहे थे कि ये बचेगी भी या नहीं उसमें उर्मिला ने बाबा जी का ध्यान किया उनसे प्रार्थना की कि हे बाबा मुझे जीवन दान दो। बाबा जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मैं कुछ समय बाद ठीक हो गई और स्वयं अपने पैरों से चलकर मंदिर पहुंची। वह कहती है जब मैं मतलब उर्मिला मंदिर पहुंची तो बाबा जी अपनी कुटिया से बाहर बैठे थे। मैंने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया तो बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा जा माँ तुझे कुछ नहीं होगा तेरी उम्र लंबी है तू अभी बहुत जिएगी और घर गृहस्थी के सभी कार्य संपन्न करेगी। बाबा जी की ये वाणी पूरी सिद्ध हुई। उर्मिला जी का कहना है कि जब मैं उस दिन को याद करके रोमांचित हो उठती हूँ जिस दिन बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था जा माँ तू सब कुछ करेगी आज मैं पुनः स्नेह भरी आंखों से देखते हुए कहती है देखो आज मैंने घर गृहस्थी के सब कर्तव्यों को भली भांति निभाया है। जब मुझ पर श्री महाराज जी कृपा ही तो है मैंने उनकी कृपा से चार धाम की यात्रा भी कर ली अपनी सभी जिम्मेवारियां बखूबी निभाई स्वामी जी के आशीर्वाद से मेरे घर में सब कुछ है अब वे मुझे शीघ्र ही अपने चरणों में स्थान देंगे। एक और भक्त के विचार या अनुभव संस्मरण पढ़ने जा रही हूँ दीपन खैरा और नीरू खैरा अखिल खैरा। दीपन खैरा और नीरू खैरा की तरफ से श्री मां जी तथा शारदा मां सेवा संघ के सभी सदस्यों को शारदा वाणी के तेजस्वी अंक की हार्दिक बधाई। हमारे पिता श्री स्वर्गीय लाला साधु राम खैरा श्री श्री महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक थे और साथ ही मंदिर के कैशियर भी। श्री श्री महाराज जी ने प्यार से कहते हैं लाला बाबा का पिता है लाला जनक है पिताजी को बाबा ने बहुत पिताजी को बाबा जी बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी सेवा अनवरत रूप से चलती रही। मेरा नीरू विवाह, नीरू के साथ विवाह लाला जी के छोटे पुत्र विपन कुमार चंदा से हुआ। ये भी जैव कृपा ही थी। एक और मेरे पिता भोपाल जो तथा दूसरी ओर मेरे सबसे लाला साधु रामचंद्र, दोनों ही बाबा के अंतरंग भक्त थे, इसलिए मुझे कुल्लू में रहने से कोई दिक्कत ना आई। मेरे माता पिता परिवार से इंग्लैंड चले गए तो मैंने श्री देवी प्रेत को अपना माई का मान लिया तथा मैं रक्षा बंधन तथा भैया दूज को मंदिर में जाती हूँ। मुझे मंदिर में भाइयों का स्नेह तथा माता जी का प्यार मिला। मेरे ससुर के स्वर्गवास होने के पश्चात माता जी ने मेरे पति विपिन खैरा जी को कैसे बनाया। माता जी की कहना है कि स्वामी कहा करते थे कि मंदिर के चाबी लाला जी की पीढ़ी ही संभालेगी। मंदिर के कार्य के लिए मैं और मेरे पतिदेव पति रविवार मंदिर जाते और कमेटी के साथ खजाना खोलते और वहीं पर बैठकर पैसे गिनते और फिर बैंक में जमा कर देते हैं। श्री श्री महाराज जी के आशीर्वाद से तथा श्री मां जी के प्यार दुलार से हम बहुत प्रसन्न हैं। श्री श्री महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मां जी को शरद वाणी के 50वें अंक के छपने पर अधिक बधाई देते हैं। विपिन खैरा, नीरू खैरा, अखिल खैरा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गीता माँ, जय माता दी।